واجب ہے قرآن مجید کی تجوید کو درست کرنا. قرآن مجید میں خود یہ فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، یعنی تجوید کے ساتھ پڑھو. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ عربی ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں الفاظ کی غلط ادائیگی کی وجہ سے پورے کے پورے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. جیسے حضرت والا دام برکاتم سے بارہ یہ مثال سنی کہ قلب، موٹی کاف سے پڑھنے کے معنی عربی میں دل کے، اور اگر اسی کو قلب پڑھ دیا جائے باریک کاف سے تو اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟ کتے کے. تو اس طرح کی غلطیاں صرف ایک باریک اور موٹے پڑھنے کے فرق کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان کا اندیشہ ہے. تو یہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے لیے واجب ہے. اور بہت حضرت اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے. وہ کیا ہے کہ قریبی علاقے میں جو بھی مسجد ہے وہاں کے قاری کو دن میں، ہفتے میں کچھ وقت دے دیا جائے، آدھا گھنٹہ، اور نورانی قاعدے سے شروع کیا جائے. اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ جلدی سے یہ جو اس میں کمی کوتاہی ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. اہمیت تو ہے لیکن توجہ نہیں ہے. تو جب توجہ ہوگی، جیسے حضرت فرماتے ہیں کہ کرنے کے کام کرنے سے ہی ہوتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں، تو اس میں بھی توجہ انشاءاللہ جب ہوگی تو یہ جو ایک اتنا بڑا نقصان ہمارا ہو رہا ہے کہ غلط نمازوں میں کتنی غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ اس سے پھر بچ جائیں گے. دوسری چیز جو حضرت والا رحم اللہ تعالی فرماتے کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. ایک مٹھی سے چاول کے برابر بھی کم کرانا یا داڑھی کا پورا منڈانا، یہ گناہ کبیرہ ہے. آج یہ گناہ عام ہے، یعنی اس کو لوگ سنت سمجھ کے، مطلب ایسی سنت غیر موقع تھا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ ضروری ہے. کوئی ایسے نبی نہیں گزرے جن کی داڑھی نہ ہو، کوئی صحابی ایسے نہیں گزرے، کوئی اللہ والے ایسے کوئی نہیں گزرے کہ جن کی داڑھی نہ ہو، کیونکہ یہ تو واجب ہے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ہے جو واجب کے درجے میں. حدیث شریف میں آتا ہے ان حق الشوارب وافو اللحا، کہ اپنی داڑھیوں کو خوب بڑھاؤ اور مونچھوں کو باریک کرو. تو اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس کی اصل وجہ یہ کہ کوئی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے لگے، ملا نہ لگے، شکل خراب نہ لگے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کیسی صورت دیں گے؟ محبوب صورت ہی دیں گے نا، سب سے اعلیٰ صورت دیں گے. اور حضرت کا اس پہ ایک عالمی شہرت یافتہ شعر مشہور ہے، پتہ نہیں دنیا کے کن کن ممالک میں یہ شعر حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ نے پڑھا، حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم نے پڑھا. کیا کہ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا، اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بد نما لگتا، تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی، صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی کسی ایسی ادا یا کسی ایسی چیز کو کیوں سنت بنائیں گے اگر وہ اس سے کوئی انسان کا چہرہ بدنما لگتا. ابھی یہ ربیع الاول کا ماحول ہے، تو ایک بات وہی کہ دو چیزیں، ایک ولادت رسول ہے، ایک سیرت رسول ہے. ولادت رسول تو ابولہب نے بھی قبول کی تھی لیکن کامیابی نہیں ہوئی، اور سیرت رسول جنہوں نے قبول کی صحابی نے اور جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہو گئے. تو ولادت میں تو جھنڈی لگانا اور یہ اس طرح کے جتنے بھی ایسے چیزیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے کرنا، تو یہ ولادت رسول تو قبول کر لیا، لیکن اگر یہ ساری چیزوں سے محرومی رہی کہ داڑھی جو ہے وہ منڈائی جا رہی ہے، کم کرائی جا رہی ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، بال سنت کے مطابق نہیں ہے، پائچے ٹخنوں سے اوپر نہیں ہے سنت کے مطابق نہیں، تو اس کا مطلب ہے سیرت رسول میں پھر کمی ہے، اس کو اپنانے میں کمی ہے. تو اس کا بہت زیادہ خاص خیال رکھنا ضروری ہے. تیسری بات جو حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پائچوں کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا. حدیث شریف میں آتے ہیں ماس فلا من الکعبین من الازار فی النار، کہ اوپر سے آنے والا حصہ، ازار کہتے ہیں اوپر سے آنے والے حصے کو، چاہے وہ لنگی ہو، پاجامہ ہو اور پینٹ ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ ٹخنوں کو چھپائے گا تو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں وہ جلے گا. تو جب ٹخنا جہنم کی آگ میں ہوں گے تو صاحب ٹخنا خود کا ہوں گے. اور اس میں بھی کیا ہے، توجہ نہیں ہے. اگر توجہ ہو اور انسان کو اس بات کا خیال ہو اور اس چیز پہ نظر ہو کہ بھائی یہ ٹخنے دو قیامت کے دن جہنم کی آگ میں جلیں گے، تو خود ہی اوپر کر لے گا. شلوار قمیض پہننے والوں میں بھی اکثر اس چیز پہ توجہ نہیں ہوتی، جبکہ گناہ کبیرہ ہے. کیوں؟ حضرت والا نے حضرت والا سے یہ بات سنی کہ جس گناہ پر دوزخ کی وعید ہو وہ گناہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ عافیت اس سے ہمیں بچا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور توجہ کی ضرورت ہے، جب توجہ ہوگی तो इंशाल्लाह फिर इस गुनाह में इंसान मुब्तिला नहीं होगा। जैसे अभी अक्सर ये बात सुनी भी जाती है और बाकी देखने को भी मिला जाता है कि अच्छे अच्छे लोग जिनकी दाढ़ियां भी हैं सब कुछ है उसके बावजूद वो इस तरह के चड्डे नहीं करे तो पहन लेंगे कि घुटना भी दिख रहा हो, जो कि नाजायज है क्योंकि सतर है ना वो। लेकिन आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत के लिए पांच छह टखनों से ऊपर करना मुश्किल है। इसके बाद जो अमल हज़रत वाला रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे ये बातनी अमल, और हज़रत वाला ने फरमाया कि मेरी जिंदगी का निचोड़ है क्या, निगाह की हिफाजत। जो शख्स निगाह की हिफाजत नहीं कर सकता, बद नजरी से नहीं बच सकता, तो वो उसको विलायत की हवा छू के भी नहीं गुजरेगी। यानी आदत जिसकी बन गई, एक है हो जाना और एक है जानबूझ के मुसलसल इस गुनाह में मुलविस रहना। एक गलती से निगाह पड़ गई फौरन तौबा कर ली वो बात अलग है, लेकिन जिसको मुसलसल ये बीमारी है कि बद नजरी से नहीं बचता तो वो तो विलायत की हवा छू के भी नहीं गुजरेगी। इस पे शेर है कि नजर के चोर के सर पे नहीं ताजे विलायत, नजर के चोर के सर के सर पे नहीं ताजे विलायत, जो मुत्तकी नहीं होता उसे वली नहीं कहते। हजरत वाला ने सुना पे इसलिए इतना ज्यादा फरमाया कि हजरत वाला फरमाते थे कि ये वो वाहिद गुनाह है, ऐसा गुनाह है जिससे इंसान बिल्कुल अल्लाह ताला से गाफिल हो जाता है। किसी और गुनाह में अगर हो भी तो उसके दिल में डर खौफ होता है, लेकिन ये बदनजरी ऐसा गुनाह है जिसमें अल्लाह ताला से बिल्कुल गाफिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गैरुल्लाह दिल में आ गया ना। जब गैरुल्लाह दिल में आएगा तो फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में कहां से होगी। और सबसे कितनी अहम बात है कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी लानत है। फरमाया लानल्लाहु नाज़िरा वल मंज़ूर इलैह, या अल्लाह लानत फरमा उन मर्दों पर जो दूसरों की बहू बेटियों जो दूसरी औरतों को देखते हो, और मंजूरा भी यानी जो जिन्होंने खुद को पेश किया अपने आप को दिखाने के लिए। तो किसकी लानत है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी लानत फरमा जो अल्लाह ताला के फरमाया यानी वो शख्स अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाए। और अल्लाह ताला ने इस गुनाह के ऊपर एक और बात ये फरमाई, इतनी खास बात है कि जितने अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म नाजिल फरमाए मर्द औरतों के लिए आमतौर पर एक ही तरह है, जैसे नमाज है, रोजा है, जक़ात है, हज है। लेकिन इस बारे में फरमाई दो आयतें अलग अलग फरमाई। पहले फरमाया कुल्लिल मुमिनीन यगुज़ू मिन अबसारिहिम, मर्दों के लिए कुल्लिल मुमिनीन यगुज़ू मिन अबसारिहिम, और उसके बाद औरतों के लिए अलग कुल्लिल मुमिनात यगुज़ू मिन अबसारिहिम। कि यानी ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों से भी कह दीजिए कि अपनी बाज निगाहों को भींच लें, और औरतों से भी कह दीजिए अलग अलग। इतनी अहमियत है इस गुनाह की, और अच्छी खासी अवाम इसमें मुलव्वस है। और सबसे ज्यादा इसमें वजह क्या है? स्मार्टफोन। छोटे छोटे काम के लिए स्मार्टफोन खोला, अब वो अच्छे अच्छे घरानों में बातें सुनने को मिल रही है कि वो रेसिपी देख रहे हैं। तो रेसिपी देख रहे हैं तो क्या वो क्या उस पर्दे में रेसिपी आ रही है, क्या आ रहा है? वो मर्द ही बता रहा है ना खाने की रेसिपी, लेकिन बस वो उसको बदनजरी नहीं समझा जा रहा, यानी उसको समझा ही नहीं जा रहा ये कोई गुनाह है। और आखिरी बात जो द्वारा फरमाते थे कि दिल की हिफाजत। दिल की हिफाजत कैसे? दिल में गंदे ख्यालात ना पकाना, बुराई से बचना, गीबत से बचना, बुग्ज से बचना, और जो ये बदनिगाही है इसका भी ताल्लुक इसी से। जब शख्स कोई बदनिगाही के गुनाह में मुलव्विस होगा तो जाहिर है उसका दिल कैसे महफूज रहेगा, क्योंकि दिल तो अल्लाह ताला का घर है, और उस घर में जब कोई गैरुल्लाह आ जाएगा तो कैसे महफूज रहेगा। तो इसकी हिफाजत के लिए सबसे अहम बात यह कि जितने ऐसे गुनाह जिससे दिल गंदा हो उससे बचना जरूरी है, क्योंकि जब ये दिल टूटेगा तभी अल्लाह ताला इसमें आएंगे। जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक बहुत ही उम्दा शेर फरमाया कि दर्द दिल दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, दर्द दिल दे के मुझे उसने ये इरशाद किया, हम इसी घर में रहेंगे जिसे बर्बाद किया। तो अल्लाह ताला तो आते ही टूटे हुए दिल में। अब ये तमाम बातों पर अमल कैसे होगा, क्योंकि मुआशरा जिस तरफ जा रहा है हर तरफ पुरियानी फहाशी मसाइल बेपर्दगी, कहीं भी चला जाए बंदा तो कैसे बचेगा? वो ऐसे बचेगा कि किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक करना होगा। फरमाया कि ये रास्ता जो है ना, ये जो बातें सारी बताई गई है वैसे तो मुश्किल लगती हैं कि यार कौन इस दौर में दाढ़ी ऐसे रखेगा, सब मुल्ला कहेंगे, पांच छह टखनों से ऊपर करेंगे तो बोलेंगे कि बारिश हो रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको, इसी तरह निगाह बचाएंगे तो लोग बोलेंगे तो ऑड है, आजकल इस दौर में कौन ये सब चीजें देखता है, हमारी कोई नीयत खराब थोड़ी है। तो ये सारी बातें जब सामने आती है ना तो फिर हिम्मत टूटती है कि यार अब क्या करेंगे। मतलब रिश्तेदारों में अगर वो बंदा कर ऐलान कर दे कि शरई पड़ता है भाई, अगर इंतजाम होगा तो मैं जाऊंगा वरना नहीं, तो रिश्तेदार अगर दो लफ्ज बोल देंगे वो ये कहाँ का मौलवी बन गया और हंसी मजाक करेंगे तो वो फौरन फिर उसकी हिम्मत टूटेगी। हिम्मत कहाँ से आएगी? जब किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक होगा। फरमाया कि ये रास्ता वैसे तो बहुत ही मुश्किल नजर आता है, लेकिन जब किसी अल्लाह वाले का हाथ हाथ में आ जाए तो ये रास्ता आसान नहीं बल्कि मजेदार होने लग जाएगा। फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत दिल में पैदा होने लगेगी। जब गुनाहों से बचेगा, जब अल्लाह ताला देखेंगे कि ये मेरे लिए मुआशरे के खिलाफ चल रहा है, तो अल्लाह ताला ही उसके लिए काफी हो जाएंगे। अल्लाह ताला इन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।
हमेशा इसका ख्याल रखना चाहिए जो कहा जाए, मजमून को मुख्तसर करें, या अगर ये हमें कहा जाए दो मिनट में बयान कर दें और उसमें हदीस शरीफ भी पढ़ना, सब चीजें आ जाएंगी इंशाल्लाह। हजरत वाला ने मुझे खड़ा किया और फरमाया 5 मिनट में, 4.5 मिनट तक दो अमल बाकी था, मैंने आधे मिनट में दोनों को पूरा किया। मुझे पता था शेख ने फरमा दिया आधा मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। हजरत वाला भी घड़ी देख रहे थे, मैं भी सेकंड देख रहा था। दिल की नजर की हिफाजत, दिल की हिफाजत, ये जो कर लेगा अल्लाह को पालेगा। दिल हो गए 5 सेकंड में हो गए, इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए जो टारगेट दिया जाए उससे तजावुज ना किया जाए। कुरान के मामले में जैसे अभी मैंने बताया, आम हालात में यही मसला है, अदब है, ये अदब है। हर इलाके का अदब अलग है, सऊदी अरब में इतना अदब ऐसा नहीं है, वहां क्योंकि आम है वो पढ़ते ज्यादा हैं, लिहाजा अदब कम है, उनके आदाब अलग हैं, हम उससे बदगुमारी भी नहीं करेंगे। लेकिन असल अदब यही है कि बिला वजह कोई अगर वहां बैठा है या तो हम आड़ के पीछे बैठ जाए, उधर पीछे बैठ जाए, ताकि कुरान जहां, हाँ दूसरी तरफ मजबूरी है। हजरत मीर साहब रहमतुल्लाह ताला ने मुफ्ती अब्दुल रऊफ सकरवी साहब दामले रकातुम से पूछा था कि मैं माजूर हूँ, व्हील चेयर पे होता हूँ, मैं जाके बैठता हूँ नमाज के लिए, तो इधर कोई कुरान पढ़ रहा है कोई इधर कुरान पढ़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऊपर बैठा हूँ। फरमाया माजूर और मजबूरी का हुक्म अलग है, आपके लिए कोई गुनाह नहीं है। मजबूरी का हुक्म अलग है, जैसे ऊपर से कोई पढ़ देख रहा है, वो नीचे पढ़ रहा है, देखे नहीं, और इसमें भी कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये मंजिलें अलग अलग हैं। लेकिन ऐसे बिला वजह कोई ऊपर बैठा है और वो नीचे बैठा है, अदब के खिलाफ है। हो सकता है गुनाह कबीरा ना हो, लेकिन बाज चीजों के आदाब उससे ज्यादा अजीम होते हैं। बाज गुनाहों से बेअदबी बढ़ जाती, बाज गुनाहों से बेअदबी बढ़ जाती, इसलिए इसका ख्याल रखना चाहिए। बिला वजह जो है इसको ऐसा ना किया जाए। वजह कोई है तो उसमें गुंजाइश है, तो ऊपर से नजर आ रहा है, अब नजर आ रहा है तो क्या करें। शरीयत कहीं भी हरज जहां पे आता है वहां मसला तब्दील कर देती, जहां पे हरज आता है वहां मसला तब्दील हो जाता है। जहां पे कोई ऐसा मामला हो कि आदमी कर ना सके तो वो वहां पे शरीयत आसानी देती है। जैसे हमने पूछा था उस जमाने में W11 चलती थी, W11 याद होगा, बहुत ही सजी बनी। मैं कहता हूँ बाद मस्जिदें भी W11 की तरह होती, सामने बिल्कुल W11 झिलमिल कर रहा है, अच्छी खासी सफेद को हमारे एक मौलाना दोस्त खानका से भी ताल्लुक हो रहा है, चमकीला कर दिया उन्होंने। हजरत वाला का जौक बिल्कुल इसके मौल, बिल्कुल ऐसा सादा। ये भी घड़ी भी हमने मजबूरन लगाई है, इसके इरादा है और ऊपर कर देंगे ताकि सामने कोई चीज ना रहे जो पढ़ी जा सके या देखी जा सके। हमारे बाकी कोई देखना चाहे तो कौन मना कर, मैं यहाँ दर्द दे रहा होता हूँ, लोग वहां से नमाज पढ़ के देख रहे होते हैं। मैं कहता हूँ तुम अपना काम करो भाई, इमाम को अपना काम करने दो, तुम मुझे क्या देख रहे हो। लेकिन आदत है बस दूर देखने की, सजदे की जगह पे निगाह रखो। तो W11 में बैठने से गाना, W11 जैसे पेट्रोल और डीजल से चलता था वैसे ही गाना भी जरूरी था उसी, और नहीं चल जाए तो लोग भी कहते अरे क्या बात है इतनी सन्नाटा क्यों किया हुआ है, ऐसे भी मन चले होते हैं। एक आदमी जो कह रहा है सबका गुना उसके सर पे आएगा, ड्राइवर जो बजा रहा है सबका, सब सुनने वालों का गुना उसके सर पे भी आएगा। मिम्मा यदउननी इलै, फरमाया कि जो औरतें बुला रही हैं, तो हजरत वाले से सवाल किया गया कि औरतें कहां, वो तो एक जुलेखा ने बुलाया था यूसुफ अलैहिस्सलाम को, औरतों को क्यों कहा? हाँ कि और औरतों ने जना ने मिस्र ने सिफारिश की थी कि यूसुफ तुम इनकी सिफारिश कबूल कर लो, उनको भी गुनाह में शामिल किया। मिम्मा यदऊननी इलैहि जमा किया गया, यदऊननी यदऊननी ये जितनी औरतें मुझे बुला रही हैं इसके मुकाबले में रब्बिस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी, या अल्लाह आपका कैद खाना मुझे ज्यादा महबूब है, बहुत ज्यादा अहब्बु इलैया। हजरत फरमाते थे हाँ जिनके रास्ते के कैद खाने महबूब नहीं अहब होते हैं उनके रास्ते के गुलसिता कैसे होंगे, उनके रास्ते के गुलसिता कैसे होंगे। तो जाना बजाना गुना है और छोटा गुना नहीं है। अल गिना युम्बितुन निफाक, गाना दिल में निफाक पैदा करता है। और अल गिना रुकयतु ज़िना, गाना ज़िना का मंतर है। और भी बहुत सी रिवायात लहव अल हदीस के ज़ेल में बहुत सी रिवायात, लेकिन आज नौजवानों की गजा बनी हुई। लेकिन अब बज रहा है, सब बजा रहे हैं, अब एक आदमी चढ़ा गाना बज रहा है, वो क्या करेगा? वो अपनी सी कोशिश करे, भाई बंद कर दो इसको, इतना कह दिया ठीक है, उसका काम हो गया। दो चार आदमी हैं अगर अपने जैसे तबलीगी साथी हैं खानकाई साथी हैं, सब कहे भाई ये बंद कर दो मेहरबानी होगी, और अगर चार छह हैं तो मेहरबानी की भी जरूरत नहीं, बंद करो इसको। फिर अम्र बिल मारूफ नहीं अन अम्र, हुक्म दिया जाएगा बंद करो कह रहे हैं इसको तरीके के साथ, तो वो कर दे तो ठीक है, ना करे तो क्या करे, तोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा इख्तियार तोड़ने का नहीं है उसमें, सिर्फ बोल सकते हैं उसको कह सकते हैं। अब बिल्कुल उसने उस पर भी नहीं किया, या अब इतना सूफी सा आदमी है वो क्या कोई सुनेगा, एक तरफ बैठ गया उसको गुनाह नहीं होगा, हालांकि गाना बज रहा है उसको गुनाह नहीं होगा। बात वही है, हमने यही पूछा क्या उसमें बैठना जायज है उस गाड़ी में, तो फरमाया हाँ बैठना जायज है, क्योंकि अब एक घंटा भी खड़ा रहेगा तो वो गाड़ी भी, वो शायद 100 में से एक ही गाड़ी ऐसी होगी जो बहुत नमाजी परहेजगार होगा जो गाना ना बजाता हो, इसके नमाजी भी ऐसे होते हैं, वो कहते ये तो सब लोगों की चाहत है क्या करें, सबके कहने पे बजाना पड़ता, बात से नमाजी भी गाने सुनते हैं। लेकिन इसीलिए कह रहा हूं वहां पे मना नहीं किया कि आप ऐसी गाड़ी में ना बैठें, क्योंकि हरज लाजिम आ रहा है, जहां भी हरज लाजिम आता है वहां शरीयत आसानी दे देती, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है खड़े होके नमाज पढ़ने में, अब बैठ के पढ़ लो कुर्सी पे पढ़ लो, नीचे बैठ के पढ़ना ज्यादा अफजल है, उसमें सजदा रुकू भी है, और कयाम अगर कर सकता है पहले कयाम कर ले। ये सारे तफसीली मसाइल मुफ्ती साहब से पूछें, मसला बताना हमारा मनसब नहीं है, हम मशवरा इसलिए इशारा कर देते हैं ताकि जहां खड़े होना उसके इख्तियार में नहीं रहेगा वहां बैठने की इजाजत हो जाए। अब बिला वजह कोई बैठ के नमाज पढ़ रहा है फर्ज या वाजिब या मुअक्कदा, उसकी नमाज नहीं होगी, इसमें दो राय नहीं है, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो इसलिए मसाइल में फर्क है, लोग समझते हैं कि ये बस यहाँ फला जगह तो ये नहीं करते, फला जगह तो फला जगह है, कुरान की बहुत अजमत है भाई। उमर रजी अल्लाह तआला जब लेते कुरान को तो उसको आंखों से लगाते और सर पे रखते, फरमाते हाजा मनशूरु रब्बी हाजा कलाम रब्बी, ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का मंशूर है, कानून है। आज हमने कानून गैरों का बनाया हुआ है, जब कायद आजम से पूछा गया था रहमतुल्लाह ताला कि आप पाकिस्तान का कानून क्या होगा, तो उन्होंने उस वक्त तो यही फरमाया था कि कुरान तो मौजूद है, कानून बनाने की क्या जरूरत। लेकिन अफसोस के बाद वालों ने इस पर अमल नहीं किया, गैरों के कानून में हम पल रहे हैं। ऐसे ऐसे कवानीन हैं कि मुर्दा साहब गए, वो वकील साहब देर से आए तो बीवी ने पूछा इतनी देर से क्यों आए हो, कहा मैं कब्रिस्तान गया था। कब्रिस्तान क्यों गए थे? कहते इसमें भी शक है, कब्रिस्तान भी जाने में शक की बात, किससे मिलने जाएगा इस साले सवाब के लिए किसी का, क्यों गए थे कब्रिस्तान? इसलिए कब्रिस्तान गया था मैं अपने मुवक्किल को, मैं वकील हूं उसको बताने गया था तुम केस जीत गए हो मरने के बाद। हाँ तो क्या करे, इतनी लंबी लंबी डेटें पड़ गई, 5 साल मरने के बाद भी 5 साल बाद उसकी फतह हुई है, ये हालत है। आप जाके देखिए पड़ोसी मुल्क में कैसे कैसे मसाइल हल होते हैं, जहाँ हल करना चाहते हैं वहां होते हैं, जहां जान के तूल देना चाहते हैं क्योंकि ताकि बहुत सी चीजें इख्तियार में रहें और बहुत से काम होते रहें। बहरहाल उनका जो काम है वो ऐसे सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। अच्छा अब कोई कहेगा देख कुरान को चूमने कह रहे हैं आंखों से लगाना हजरत उमर का अमल है, सहाबी का अमल हुज्जत है, और कोई अंगूठा चूमने की बात करे तो हम यहाँ पे कहेंगे अंगूठा चूमना सहाबी से साबित नहीं है और कोई सही रिवायत नहीं है, जो सही रिवायत कोई लाए हमें दिखाए हम भी चूमना शुरू कर देंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह।
इधर हाथ चूमना, बुजुर्गों के हाथ चूमना। कल एक दोस्त ने मौलाना जलील अहमद साहब का माथा चूम लिया। अहले अरब करते हैं माथा चूमना, उनके यहाँ कब्बल आईना ही दोनों आंखों के दरमियान बूसा लेना अहले अरब का तरीका है। आप अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद सिद्दीक अकबर ने भी आपका बूसा यहाँ पे लिया, उस वक्त भी लिया जब ईमान लाए, उस वक्त भी यहाँ बूसा लिया, जब आपका विसाल हो गया जब भी यहाँ बूसा लिया। हजरत मीर साहब का विसाल हुआ तो हम वहीं थे, हजरत वाला के विसाल के वक्त में तो इतना रश था कि हम अंदर नहीं जा सके, तो मीर साहब रहमतुल्लाह ताला को हमने उस वक्त में ये सुन्नत पूरी की, सहाबा की सुन्नत सिद्दीकी, इस वक्त में जो है पेशानी का बोसा हजरत सिद्दीक अकबर ने दिया नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद। और पहली मुलाकात थी, जब पहली मुलाकात सम्राट जब आपको नबूवत मिली तो आपने पूछा, आपने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया, तो हजरत सिद्दीक अकबर ने पूछा मत दलील अला मा तदई, आप जो दावा कर रहे हैं इसकी क्या दलील है? सिद्दीक आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया रुया कभी शाम, जो वो तेरा ख्वाब है जो तूने शाम में देखा था। उन्होंने किसी को बताया नहीं था, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बता दिया, वो समझ गए, फौरन कलमा पढ़ा और कब्बल आईने आंखों के दरमियान यानी पेशानी पे बोसा दिया। तो उन दोस्त ने भी कर दिया, तो मैंने कहा ये क्या तुम चुम्मा चाटी वाले उस पे आ गए हो, यानी हमारे पाकिस्तान में नहीं चलता ना ये, अरब में चलता है, लेकिन उसमें जरूरी है कि अब मौलाना घर 65 साल की उम्र है कम से कम, तो उसमें क्या हर्ज है, लेकिन कोई अगर अमृत बच्चे को ऐसा करने लगे तो नाजायज हो जाएगा। ये प्यार से कर रहे हैं, नाजायज होगा, गैर गैर में अपने नवासे को पोते को कोई कर रहा है उसमें भी, इसीलिए फर्क है कि अपना नवासा पोता, लेकिन अपना नवासा पोता है तो दूसरों को पता नहीं है, सबके सामने उसको प्यार कर रहा है, उसको क्या पता है कि नवासा है पोता है, इसीलिए यहां भी देखा जाएगा। तो बहरहाल अब वो ये इसके बारे में क्यों उम्मत लिखते हैं, जब कभी मुझे भी बहुत जोश हुआ तो मैंने चूमा, वरना मैं हर वक्त हाथ चूमने का कायल नहीं हूं। बुजुर्गों का हाथ या माथा, कभी जोश हो जाए तो आदमी चूम ले, जोश में कि मोहब्बत का जोश है माथा चूम ले। हजरत वाला लेटे रहते थे, बाद दफा हम हजरत वाला के पैर मुबारक जो है वो चूम लेते थे, इसमें क्या है, शेख का पैर जो है ये इसमें तो औलिया अल्लाह के, हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह के कदमों के नीचे वो ताज के मोती होते हैं जो बादशाहों के ताजों में सजते हैं, औलिया अल्लाह के कदमों के नीचे वो होते हैं, यानी इतने आला दर्जे उनके कदमों में, क्योंकि उनके नक्श कदम पे चल के जन्नत मिलती है इसलिए। लेकिन ये सब इसीलिए एतदाल में रखा जाएगा, हद से बढ़ेगा तो वहीं बिदआत शुरू हो जाएंगी। इसलिए आज ये बात असर में आ गई थी, शैतान ने कहा हजरत मौलाना मदर साहब दामोदर कहा तुम ये रिवायत सुनाते थे, सुन सुन के याद हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, कि अलैकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अलैकुम लाजिम पकड़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह वल इस्तिगफार, ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लो, रोजाना पढ़े, हर आदमी पढ़े, बैत होना कोई जरूरी नहीं है इसके लिए, लाजिम पकड़ने का हुक्म है भाई, पढ़ना चाहिए, अब वजूब है या नहीं है, लेकिन 100 मरतबा रोजाना आदमी पढ़े तो क्या हर्ज है, 5-7 मिनट लगेंगे, आप मजलिस में नहीं बैठ सकते ना बैठे। अव्वल तो आप अलैहिस्सलाम के इरशाद लिखा है शेख ने फजाइल जिक्र में कि मुझे ये ज्यादा पसंद है जिस पर सूरज तुलू होता है, कि मैं फजर के बाद किसी जिक्र की मजलिस में बैठूं जिक्र के लिए, खुद जिक्र करने का नहीं फरमाया, जिक्र की मजलिस फरमाया, क्योंकि जहां बहुत सारे लोग मिलकर अल्लाह को याद करते हैं वहां का मामला ही अलग होता है, वहां अनवारात बरसते हैं, महफिल को फरिश्ते घेर लेते हैं, फरिश्ते घेर लेते हैं, अल्लाह की रहमत उनको ढांप लेती है, ला यज़कुरून अल्लाह यौम अल-क़िया, ला यज़कुरून अल्लाह, कोई भी कौम कौमी यज़कुरून अल्लाह, कोई भी कौम अल्लाह को याद नहीं करती, इल्ला हफ्फतहुमुल मलाइका, मगर फरिश्ते फौरन घेर लेते हैं, फरिश्ते घेर लेते हैं। तो मजलिस के आदाब में यह भी है, जब एक मजलिस हो रही है तो आदमी वहां बैठ के कोई अमल ना करे, अल्लामा शामी ने इसको लिखा है, ये हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या है, वो तुम बयान कर रहे हो हम क्यों बैठे, नहीं बैठो तो दूर चले जाओ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। हजरत शेख मौलाना हजरत रदोई रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मजलिस हो रही हो कोई मुंह से पढ़े भी नहीं बल्कि खामोश बैठे, क्योंकि एक जिक्र का काम हो रहा है, इसका पढ़ना दलील है कि ये अपना पढ़ना चाहता सुनना नहीं चाहता, क्योंकि दिल दो तरफ मुतवज्जो नहीं होता, या तो पढ़ने में ध्यान नहीं होगा या सुनने में ध्यान नहीं होगा, एक काम जब हो रहा है तो उसमें शामिल रहो, या तो उठ के चले जाओ घर जाके जो करना है, कोई पकड़ता है जबरदस्ती किया कभी, मैं तो इसीलिए थोड़े आराम से नमाज पढ़ता हूँ, और भी जी चाहता है आराम से पढ़ूं, लेकिन साथियों को देर का अंदेशा है। हम लोग मजलिस में बाहर बैठे रहे, इंतजार कर रहे होते थे, यूं बैठे यूं बैठे, किसी को नींद आ रही है, मीर साहब दुआएं मांग रहे हैं, अपने वक्त से 15 मिनट तजावुज हो गया, और क्या है जो आया है बैठे अल्लाह के लिए, बैठने भी सवाब मिलेगा, इसलिए मैं आराम से पढ़ता हूँ, दिल चाहता और भी आराम से हूँ, जैसे आम दिनों में पढ़ता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग जल्दी नमाज पढ़ते हैं उनको ताल्लुक माल्ला कैसे मिलेगा। जल्दी नमाज पढ़ने से ताल्लुक माल्ला नहीं मिलता मेरे भाई। जब तक आदमी दिल की गहराई से ना कहे, 3 की जगह 5 मरतबा ना कहे अल्लाहुम्मा अग़फिरली ना पढ़े, जब तक सजदा सजदे की तरह ना हो, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। और बंदे ने अर्ज किया कि जिंदगी भर की रियाजत का उसे हासिल कहें, जिंदगी भर की रियाजत का उसे हासिल कहें, एक सजदा भी अगर हो कैफ एहसानी के साथ, एक सजदा भी अगर हो कैफ एहसानी के साथ। राबता कम होगा, इसका मतलब सुनिए, राबता कम होगा जितना आलमे फानी के साथ, रूह निकलेगी असर इतनी ही आसानी के साथ। जितना कम होगा इतना आसानी, राबता कम होगा जितना आलमे फानी के साथ, रूह निकलेगी असर इतनी ही आसानी के साथ। और गो परेशानी तो है इस सैल उरियानी के साथ, मतलब आसानी देखिए, गो परेशानी तो है इस सैल उरियानी के साथ, हलवे ईमान भी तो है फरावानी के साथ, हलवे ईमान भी तो है फरावानी। ईमान का हलवा मिल रहा है, मिठाई, ये हलवा अरबी का लफ्ज है, आप समझते हैं मजा कर रहे हैं, हलवा हुलवन अरबी का लफ्ज, हुलवन आप अलैहिस्सलाम को हुलवन, आपको आपको हल यानी मीठा पसंद था, ये रिवायत मौजूद है। लिहाजा ये हलवा क्या है, हलवा हलावत मिठास को कहे, दिल की मिठास मिलेगी। हज़रत फरमाते तुम आंखों की मिठास फिदा करो, अल्लाह ताला दिल की मिठास अता फरमाएंगे। और बाज़े लोग पूछते हैं दफ्तर में क्या करें, मैडम होती हैं, मिस होती हैं, मिस से जो है वो डिसमिस होने का खतरा है। मैंने अर्ज किया है कि जाने जाना से जब प्यार हो जाएगा, जाने जाना से जब प्यार हो जाएगा, जान देना मजेदार हो जाएगा, जान देना मजेदार हो जाएगा। और भूल कर भी अगर मिस पे मारी नजर, भूल कर भी अगर मिस पे मारी नजर, शहर तकवा का मिस मार हो जाएगा। मिस पे मारी नजर, मिस पे मारी नजर, अहले ज़ौक समझेंगे इसमें क्या क्या यानी मुनासिबत। भूल कर भी अगर मिस पे मारी नजर, शहर तकवा का मिस मार हो जाएगा। तो इस वक्त क्या करें, उष्टी पुष्टी नजर डाल, क्यों करके दे, नजर डाले भी नहीं, कोई चीज लेना ये ले ले भाई, खुशकी से बात करें। क्योंकि ये नहीं कहा जाएगा कि ऑफिस छोड़ दें आप, औरतें जहां पर हैं भाई, आजकल रिस्क की ऐसी परेशानी है, और ऑफिस छोड़ देंगे तो फिर तो बहुत ही कम काम रह जाएगा, बाजार में भी अगर बैठेंगे अपना काम लेके वहां भी औरतें आएंगी, तो लिहाजा औरतों से बचना ऐसा, लेकिन उनको देख के बात करना नहीं भाभी, ये बहुत मैं आपके लिए खास खास पैकेज लगा रहा हूँ, आपा आपा कह के पापा खा रहे हैं और शैतान छापा मार रहा है, एकदम दौर से देखेंगे चाहे आंखें भी खुली हैं। इसलिए औरतों को बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। हमारे वाला फरमाते थे रहमतुल्लाह ताला, अब देखिए दो बुजुर्ग हैं, दोनों का जौक देखिए, इसलिए बताओ औरतें भी आती हैं और आप लोग भी इसका ख्याल करें। हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला एक बुजुर्ग थे, मैंने बहुत अच्छी तरह ज़ियारत की है, बहुत करीब बैठता था, पहला आदमी छोड़ के दूसरा आदमी लड़कपन में शौक होता है, बला से जान जाएगी तमाशा घुस के देखेंगे, है ना, तमाशा घुस के देखेंगे। और असर के आम दिनों में लोग भी कम होते थे, इससे भी कम लोग होते थे, मरने के बाद लोग अलकाबात लगाते हैं, जिंदगी में कदर थोड़ी करते हैं, इससे भी कम लोग आम रोजाना की मजलिस में होते थे। तो असर के बाद में चला जाता था एफसी एरिया से मुजाहिद कॉलोनी, यहां से जैसे केडीए कम से कम इतना फासला, पैदल जाता था, बाइक वाइक नहीं थी हमारे पास। आज मैं कहता हूँ दोस्तों बाइक खराब है तो नहीं आते, जुमला औलिया अल्लाह के पास बाइक हुआ करती थी। हजरत शेख उल हिंद रहमतुल्लाह ताला कितनी दूर जाते थे, 20 मील चल के जाते थे, बाइक पे जाते थे, गाड़ी पे जाते थे, पैदल चल के जाते थे। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक थी, एक शौक था, एक शौक था, गलबे शौक था, इतना उस जमाने में अल्लाह ताला ने तौफीक दी। अब सोचते हैं तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि बुढ़ापा आ गया। जब चल के पैदल चलने में मजा आता था, जाने में, उनको देखने में, और फिर उनका फोन नंबर मेरे पास था, लेके खासकर मैं फोन पे मसाला पूछता था, मसाला सोचता रहता था क्या मसाला पूछना है, तो मसाला पूछता था खासकर। तो बहरहाल उन्होंने फरमाया अपने मुरीदों से, यानी आम बयान में, कि औरतों से, घर वालों से रंग पूछ लें कपड़े का, लेके जाने के लिए नहीं कहा, रंग पूछ लें किस कलर का लाना है, पीले कलर का लाना है, पहले पीले नहीं येलो, सही है, ग्रीन नहीं तो हरा, कोई तो है, तो इस कलर का लाना है, अब कौन से फूल होने चाहिए उस पर, फूल बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए, या प्लेन चाहिए, ये भी पूछ लो, हो सकता है प्लेन, ये सारी चीजें, कपड़ा क्या होना चाहिए, वॉशन वेयर होना चाहिए या लॉन होना चाहिए, कॉटन होना चाहिए, सारी चीजें करीब करीब पहुंच गया ना इस पूछने से। अब जाके आप ले आए, रंग भी वही और फूल छोटे या बड़े जो उन्होंने कहा था, और कपड़ा भी वही, अब लाके उसको दिया, लेकिन फरमाते औरतों की आदत होती है, ये क्या ले आए, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब फरमाया कि माचिस लाओ और लाके उसको वहीं आग लगाओ और कहो अब अगले साल आएगा। ये नहीं कि उनका मिजाज था, हमारे वाले के मिजाज में शफकत, मोहब्बत, मवद्दत बहुत ज्यादा थी, खासकर फरमाते थे बीवियों का ख्याल रखो। फरमाया इसको ले जाओ भाई, साथ ले जाओ, आजकल तो लोग बाइक पे लेके जाते हैं, लेके जाओ, पसंद वो कर ले, और बार्गेनिंग तुम करो, बार्गेनिंग ना करे औरत, पसंद तुम कर लो, वो कर ले और बार्गेनिंग तुम करो, भाई लेना है नहीं लेना, मर्द सही से बार्गेनिंग करता, भाई इतने में देना है, वरना और मार्केट देखेंगे, हर चीज हर जगह मिल जाती है, नहीं नहीं आपको कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आ जाएंगे हम, इतने में देना है या नहीं देना, वो खुद ही फिर देता है, अश्ता पछता के बताएगा, वहां कोई और अच्छा मिल जाएगा तो वो ले जाएगा। लिहाजा औरतों को बार्गेनिंग करना मुनासिब नहीं है। तो मस्तूरात, और बिला वजह हजरत फरमाते थे जो काम की चीज ना लिखते रहो, झाड़ू लेना है, झाड़न लेना है, झाड़ू की अहलिया झाड़न, कुछ भी ऐसी चीजें लेनी है, फला क्या वो लेना है, मैच क्या फलाना, दुपट्टा लेना है, फलाना, ये सब लिख लो, फिर एक महीने में जब हो जाए कई चीजें जमा, एक दफा चली जाओ अपने महरम के साथ, वो भी महरम के साथ, और जाके ले लो लिखा हुआ, और लिखा हुआ लो उसमें भी मिला, ये खड़े हो गए, यहाँ खड़े हो गए, वहां खड़े हो गए, मार्ट में क्या होता है, कहते हैं ये खास पैकेज है, ये 2-in-1 है, इसमें 2 है साबुन, 3 है, अब 3 ले लेगा आदमी, जगह जरूरत एक की है, ले लेगा 3, और वो उसमें जो है क्वालिटी भी कम है, पैसे पूरे ले रहे हैं, और ऐसी बस बचत कह रहे हैं, बचत नहीं चपत होती है उसमें, तो ये अक्सर फजूल खर्ची इसीलिए हो रही है, फजूल खर्ची। तो कोशिश करें कि फजूल खर्ची से बचें, कि वो लमत फरमाते हैं बहुत सारा सामान लेके आके मत डाल दिया करो, जाया हो जाता है, औरतों के मिजाज में बखेड़ा होता है, मर्द क्योंकि खुद कमाता है, उसको पता है कि कितनी मुश्किल से आमदनी होती है, इसलिए वो उसको एतदाल से खर्च करना चाहिए, एतदाल से जो खर्च करेगा मकरूज नहीं होगा इंशाल्लाह। शादी ब्याह में भी कर्जे की क्या जरूरत, जितना है बस ठीक है, 5 आदमी को बुला के खाना खिला दे, वलीमा हो जाएगा, पूछिए ओलमा यहाँ बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, ये 2-4 ओलमा है, ये मुफ्ती साहब भी आए, ये भी मुफ्ती है, पूछ लीजिए, 3 आदमी भी खा लें वलीमा हो जाता है, 3 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी खिलाना क्या मुश्किल, 200 आदमी खिलाने, 200 में तो कितना कर्जा हो जाएगा। और इसी तरह जो सोना भी जरूरी नहीं है, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लें, कुछ भी नहीं है, जितनी आसानी से हो सके जो इख्तियार में है, जितना किसी को अल्लाह ने दिया है वो करे, कोई हर्ज नहीं। वहां मदर साहब ने किया, मैंने बताया अपने बेटे का वलीमा, 700 तलबा, जो जितने तलबा थे सबको खिलाया, तलबा इकराम को खिलाना तो सवाब है भाई, हम सूफिया थे और वो तलबा थे, सब ये दीनी किस्म के लोग, आम लोगों को ठीक है, अगर किसको रिश्तेदारी उसको भी बुलाना चाहिए, लेकिन ये आमतौर पे जो है गाड़ी वालों को बुलाएंगे, दाढ़ी वालों को नहीं बुलाएंगे, ये तरीका ठीक नहीं। तो बहरहाल ये बात अभी चूंकि मौजू चल रहा है, जैसे इन्होंने वक्कासुद्दीन साहब ने फरमाया 3 मिनट इजाफा लेकर, जिसको मैंने कहा कि आइंदा ये गुंजाइश नहीं दी जाएगी, जितना शेख कहे बयान करो बस, तो करते रहो, और शेख मना करे तो वहीं पे खामोश हो जाओ बस, 5 मिनट कहे तो 4.5 मिनट में खत्म कर दो, क्योंकि बहुत से लोग ये बात क्योंकि होती रहती है ना, उकता जाते हैं ज्यादा तफसील में जाने से, जो बात फिर वो समझते हैं कि बस ये एक ही सबक है, ये सबक इसलिए है कि आपको याद हो जाए, ये सबक इसीलिए कि याद हो जाए और इसको आगे सुनाइए, ये खास कर ये हदीसें याद कर लेना, जिसको याद नहीं है वलीउल्लाह बनाने वाले चार अमाल मुफ्त में मिलती है यहाँ से, आप उसको ले लें, उसमें वफ़िरुल्लाह वाफुश्शवारिब, ये याद करने में कितने घंटे लगेंगे बताइए, बड़े मियाँ भी याद करें तो 5 मिनट में याद हो जाएगा, 10 दफा 20 दफा रटेंगे याद हो जाएगा, जब आप सुनाएंगे قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين مشرکین کی مخالفت کرو وفر الله واحفظ الشوارب, दूसरा आदमी आंखें फाड़ के देखेगा ये तो हदीस सुना रहा है भैया, फिर वो आगे से कुछ नहीं बोलेगा, अगर नहीं भी रखेगा समझ जाएगा मैं गुनाह कर रहा हूँ। आज हमने बोलना छोड़ दिया, वहां मदर साहब फरमाते हमने बोलना छोड़ दिया, लोगों ने हमें कहना शुरू कर दिया, दाई नहीं बनेंगे तो मदऊ बनेंगे, हमें पहले कहना चाहिए भाई माशाल्लाह नमाज तो पढ़ते हैं हम लोग, लिहाजा चेहरा भी हम सुन्नत से सजा ले, तो विलादत तो मना रहे हैं, सीरत को नहीं देख रहे हैं, ये बात सही है, सीरत असल चीज है, हकीम उल उम्मत फरमाते सिर्फ विलादत क्यों, आपकी जिहाद की जिंदगी को भी बयान करना चाहिए, आपकी वफात को भी बयान करना चाहिए, 26-27 मरतबा जब आप खुद निकले सहाबा के साथ, आप खुद निकले या नहीं निकले बताइए, अगर इतना होता आप मैं दुआ कर रहा हूं तुम लोग जाके लड़ो, आपने साबित किया कि देखो कितना अहम फरीदा है ये, 27 मरतबा आप खुद बनफ से नफीस निकले, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, आप अल्लाह के सामने रो रहे हैं, क्या क्या हालात, लोहे की खौद पहन के आप मैदान में उतरे और वो लोहे की खौद आपके जबीन मुबारक में घुस गई, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने उसको निकाला, उनके दांत टूट गए, इतना मुश्किल से निकाला, आप अलैहिस्सलाम को कितनी तकलीफ पहुंची होगी, आपने फरमाया कि क्या हाल उस कौम का जो अपने नबी को तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन बद्दुआ नहीं की, फिर भी बद्दुआ नहीं फरमाई, तो बताइए ये सब भी तो बयान करने की चीज है, आप फतेह मक्का के मौके पे आपने जो किया कितना एहसान फरमाया, 12,000 सहाबा साथ थे और बाजों का नारा ये था आज का दिन इंतकाम का दिन है, आपने फरमाया आज का दिन माफ कर देने का दिन, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज का दिन माफ कर देने का दिन, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया, जाओ मैं भी माफ, वो अबू सुफियान जो सारी जिंदगी लड़ता रहा, हजरत अब्बास लेके आ गए, आप इनको भी कुछ अता फरमाइए, ईमान अता हो गया अल्लाह ताला ने, और कोई शरफ भी अता फरमाइए, कहा कि जाओ जो अबू सुफियान के घर में छुप जाएगा वो महफूज हो जाएगा हमसे, जो बैतुल्ला में पना ले ले वो भी महफूज है, जो दार अरकम में छुप जाए वो भी महफूज है, हर तरफ से आपने चाहा कि कोई जद में ना आए, तो चंद ही लोग थे जो लड़े और उनको नुकसान हुआ, वरना आपने आम माफी का ऐलान कर दिया, ये आपकी आपकी रहमत की शान है आपकी, और इसकी वजह से कितने लोग मुसलमान हो गए, इकरमा हजरत इकरमा ये ज्यादा से कह रहे, इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे दोस्त हैं मौलाना अब्दुलरहमान मेमन साहब, उन्होंने अपने पोते का नाम रखा है इकरमा, तो खास तौर उन्हें इकरमा कहा, लोग इकरमा कहते हैं, इकरमा रजी अल्लाह ताला कौन है, इसमा बिन अबू जहल, अबू जहल का बेटा रजी अल्लाह अन्हु हो गया, अबू जहल का बेटा रजी अल्लाह अन्हु, किसी ने पूछा आपसे वो भाग रहा है जद्दा जा रहा है, आप कहें तो उसको बुलाऊं, क्या उसको अमन मिलेगा, और मैं बुला लो सबको अमन है, अपने जानी दुश्मन जिसके मरने पर आपने सजदा अदा किया उसके बेटे को भी आपने माफ कर दिया, कितना बड़ा फिरौन था, फिरौन हाजिल उम्मा फरमाया, उसके बेटे को भी आपने माफ कर दिया, और माफ करने का ये कि बाद में जिहाद करते रहे हजरत इकरमा रजी अल्लाह तआला और बेहतरीन सहाबी बने, खालिद इब्ने वलीद, वलीद इब्ने मुगीरा है, क्या हाल खालिद इब्ने वलीद, दो बेटे मुसलमान हुए, बाकी सारे बेचारे, जिसे अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह का एहतमाम करें, तमाम साथी इसको हृदय जान बना लें, 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम, चलो कभी शाम में मसरूफ हो गए सुबह का तो लाजमी समझ लें, कंपलसरी, सरसरी ना समझें इसको, कंपलसरी समझ लें, अलैकुम फरमाया, अलैकुम पूछिए उलमा से, लुजूम के लिए आता है, यानी जरूर पढ़ा करो, जरूर भी ऐसे भाई देखो ये काम जरूर, देखो बेटा दूध जरूर पिया करो, ये किस लिए है, ये तशद्दुद है, ये मोहब्बत की वजह से कहा जा रहा है, देखो बेटा दूध जरूर पिया करो, तुम्हारा जहन जो है तुम्हारा जहन इससे सही रहेगा, तो इसलिए आपने फरमाया अलैकुम ला इलाहा इल्लल्लाह वल इस्तिगफार, ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लो, रोजाना 100 मरतबा और शाम भी हो जाए 100 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा हो जाए सुबह शाम, वाकई इस्तिग़फ़ार टोटल 100 मरतबा हो जाए, 70 मरतबा हो जाए। इसमें ये चलते फिरते सजदे में जब आप नफिल पढ़े 3 मरतबा अल्लाहुम्मग़फिरली रब्बिग़फिरली अल्लाहुम्मग़फिरली, सजदे में कितनी दफा हो जाएगा, कितने सजदे करते हैं तो कितना आदमी कितनी दफा इस्तिग़फ़ार कर सकता है। अव्वाब की तफसीर में देख रहा था, अव्वाहुम मुनीब, दोनों तकरीबन एक ही मुतरादिफ हैं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाला, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाला अव्वाब। हे साइम इधर आके बैठो, इधर आओ। अव्वाब अल्लाह ताला, मुनीब मुनीब भी रुजू करने वाला, अव्वाब तवज्जो करने वाला। इधर आके बैठो सामने। ये बैत हुआ था 3 साल पहले, हमें तो याद ही नहीं था, बताइए। सीधे बैठो, अफालती मार के बैठो ताकि ऊंट की तरह पीछे आदमी ना छुप जाए। अव्वाब की तारीफ में लिखते हैं मुफ्ती शफी साहब किसी सहाबी के हवाले से कि अव्वाब वो शख्स है कि जो तन्हाई में अल्लाह से माफिया मांगता है, या अल्लाह माफ फरमा, तन्हाई में अल्लाह से लौ लगाता है, माफी मांगता है। हजरत फूलपुरी रहमतुल्लाह ताला के बारे में क्या गुनाह किया था इन लोगों, हर रब या रब्बी माफ फरमा दी, रब्बिग़फिर वरहम, पड़े चले जा रहे हैं। अरे माफी मांगने में जो मजा, अल्लाह वालों से पूछो। हजरत वाले कितने मोहब्बत के साथ पढ़ते थे, देखिए अंदाज देखिए। हम लोग कहते हैं अस्तग़फ़िर रब्बी उनके लिए, अस्तग़फ़िर उनके लिए, चारों तरफ तस्बीह भी हाथ पीछे करके वहां वहां टांगा हुआ है जहां पे कभी भी बमबारी हो सकती है ना, ये तस्बीह रखने की जगह है। हजरत फरमाए तस्बीह हाथ में सीधे रखो भाई, ये पीछे करके तस्बीह ना रखो ऐसी जगह पे, खतरनाक जगह पे। अस्तग़फ़िर हजरत वाले कहते रब्बिग़फ़िर वरहम وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم। देखिए इसमें कैसे इल्तिजाइया अंदाज है, या अल्लाह माफ कर दिया, आप माफ नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे। رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين لا إله إلا أنت। हजरत फरमाते हैं इसका आशिकाना तर्जुमा, अल्लाह आपके सिवा हमारा कौन है, कौन काम बनाएगा, आप ही तो काम बनाएंगे। لا إله إلا أنت سبحانك, आप पाक हैं। इन्नी कुंतु मिनव्वालिमीन, मैं इंतहाई जालिम हूं, मैं तो बहुत जालिम हूं, आप पाक हैं। इन्नी कुंतु मिनव्वालिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह कैसे पढ़ते थे हाजी साहब, हमें ऐसा नहीं पढ़ना है लेकिन बता रहा हूं कैसे पढ़ते। हाजी साहब 200 साल पहले गालिब के जमाने के बुजुर्ग हैं, गालिब का जमाना, ख्वाजा मीर दर्द का जमाना गालिब का जमाना है, तो उसमें हजरत हाजी साहब थे। ये शेर मीर दर्द का है जो हाजी साहब पढ़ते थे, हजरत ने फरमाया हाजी साहब पढ़ते थे, कौन सा, तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा ना देखा, तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा ना देखा, बराबर है दुनिया को देखा ना देखा, तुझी को जो यहाँ जलवा फरमा ना देखा। मीर दर्द का शेर है, बराबर है दुनिया को देखा ना देखा। हाजी साहब पढ़ते थे, उनके जौक का था। हाजी साहब कैसे जिक्र करते, लो लो इल्लो लो। ऐसे करके 2 घंटे जिक्र करते, कोई सुन के ना करने लगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कि मलम्मत ने इस झटके को कम कर दिया, यूं कहा, यूं फरमा, यूं कर, लो लो इल्लो लो, लो लो इल्लो। हकी मलम्मत उस वक्त भी 100 साल हो गए करीब करीब, और फिर उसके बाद हजरत वालों ने इस झटके को भी खत्म कर दिया, फरमा मौत का खटका और जिक्र का झटका खत्म करो, खुश रहो और आराम से नरमी के साथ जिक्र करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हल्का सा झूम जाओ, इल्लल्लाह इल्लल्लाह। चल दिलों में कमजोरियां आ गई, डाल्टा शरीफ का जमाना है, असली चीजें मिल रही हैं। गाय को ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं, पूछिए दूध वाले बैठे, भैंस को इंजेक्शन लगाते हैं तो वो दूध देती है, असली दूध वो भी नहीं है, इंजेक्शन का दूध है। फलों में जो खाद इस्तेमाल हो रही है, पूछिए कौन सी हो रही है, फल भी वाले नहीं है जो पहले होते थे। तो अब जाहिर सी बात है, अब भी आदमी वही दो घंटे जिक्र करेगा। आज एक साहब आए थे, वसवसे आते हैं, ख्वाब आते हैं अजीब अजीब। मैंने कहा वसवसे वजीफे ज्यादा ना पढ़े, बस थोड़ा जिक्र करें, अल्लाह को राजी करें, इस पर जोर नहीं देते लोग, और खूब और पढ़ रहे हैं और वसवसा आता है, क्योंकि पढ़ने से जहन में खुश्की होती है। इसलिए तेल की मालिश करो, दूध पियो, अल्लाह ने दिया है 1 पाव कम से कम दूध पिए और तेल की मालिश करे सर में, कोई मुरीद ना हो, बीवी भी ना करे तो खुद ही कर लो भाई, क्या है, चांदी पे तेल रख के उसको अच्छी तरह सुखा लो, और बाजों को ऐसा होता है सुबह उठ के नहा लो ताकि वो असरात भी ना रहे। आज के नौजवान तेल डालने से शर्माते हैं, पुराने जमाने का आदमी लगता है। अरे मियाँ, पुराने जमाने में सेहत थी, आजकल क्या सेहत है? बकौल शख्स से ये पंखा चल रहा है, इतने दुबले होते हैं इसकी तरह, ऐसे करके पंखा तेज कर दिया, चल बेटा बाहर, वापस ना आना, पंखे की हवा से बाहर चले जा रहे। ये हालत, ये कुवतें क्यों कमजोर हो गई? क्योंकि खाना सही नहीं, पापड़ खाते हैं, टॉफी खाते हैं, गोश्त नहीं खाते, कलेजी नहीं खाते। हमारे अब्बा कहते थे कलेजी खाया करो, इसमें आयरन होता है। हमारे वालिद साहब जो बातें करते थे, मैंने अभी तक उसको याद रखा हुआ है। तो बहुत गुर की बातें होती थी बात, देखो तो ये चीजें। और ये भी सब्जी में भी, दाल में भी, हरी सब्जियां और दाल इसमें भी जानदारी है, लेकिन खाए तो आदमी सही से। बहरहाल अलैकुम बिला इला इल्लल्लाह वल इस्तिगफार, आपने इरशाद फरमाया। और ये रिवायत हजरत शेख ने फजाइल जिक्र में भी नकल की है, ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिगफार को लाजिम पकड़ लो, 100 मरतबा, 200 मरतबा, बस इतना ही मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। अब कोई 2000 मरतबा पड़ेगा तो अपनी जिम्मेदारी पे पड़े। इसलिए जैसे एक दो रोटी कोई खाता है, 20 रोटी खा ले, जैसे मौलाना कल फरमा रहे थे 60 रोटी में से उसने 15 रोटी खाया, बताइए 60 रोटी खा तो 20 रोटी खाएगा तो क्या होगा, खत्म थोड़ी होगा और बेकार हो जाएगा। तो दो की जगह आदमी चल अच्छा सालन बनाए, 2.5-3 खा लेगा, लेकिन दो की जगह 20 नहीं खाएगा कभी। इसीलिए जब 200 बता रहे हैं, बहुत किसी दिल चाहे तो 250-300 कर लें, इससे ज्यादा ना करें। इससे ज्यादा भी करना हो सकता है कि इजाजत मिले, लेकिन शेख से आके पूछें, फिर शेख देखेगा, फिर मसरूफियात पूछेगा, फिर उसके बाद इजाजत देगा। वरना कहे इसी पे करो, बस तकवा इख्तियार करो, जो न करने के काम है, यानी नजर की हिफाजत, दिल की हिफाजत का एहतमाम करो। तो अब यहाँ आगे आगे इस रिवायत है, अलैकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह वल इस्तिगफार अक्सिरु मिनहुमा, इन दोनों को अक्सर पढ़ा करो, कसरत से पढ़ा करो। पहले का कसरत 1000-5000 होता था, 6000 हकीम उम्मत बताते थे जिक्र, 6000, जिसको 200 ज्यादा लगता है ना वो याद करे कि 6000, 12000, अच्छे मुस्टंडे लोगों को 12000, और अल्लाह अल्लाह 24000, और हम जैसे कमजोरों को 6000, और जो जहनी बीमार हो उसको 3000, वो भी 3000-300 नहीं। अब उसके मुकाबले में 200-100 क्या है बताइए, ये भी कोई ना करे। तो अक्सिरु मिनु, इसको दोनों को अक्सर पढ़ा करो, दोनों को अक्सर पढ़ा करो। अब आगे रिवायत करते हैं, मौलाना भी फरमाते हैं, हज़रत शेख ने भी लिखा है कि फ़इन्ना इबलीस क़ाल, इबलीस कहता है अहलकतुन्नास बिज़्ज़ुनूब, मैंने लोगों को गुनाहों से तबाह किया, ऑल फॉल चक्करों में फंसा के, अहलकूनी बिकौल ला इलाहा, अहलकूनी बिला इलाहा इल्लल्लाह वल इस्तिगफार, लोगों ने मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह और इस्तिगफार से हलाक कर दिया। मैंने इतना किया, 65 साल के पहुंच के वो जिक्र करने लगे, जिंदगी जवानी में नहीं याद रहा बिलफर, अब बूढ़े हो गए, तौबा कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसा कलमा है, मैं बार बार अर्ज करता हूँ, माहियुज ज़ुनूब भी है, माही माही माहिन नबी अलैहिस्सलाम का एक नाम है, माहिन मिटाने वाला, यानी बुराई का मिटाने वाला, माहिन। एक जुलविस्तान जौहर में एक हमारे दोस्त मिले थे तो उनका नाम माहिन था, माहिन कहते, मैंने माहिन नहीं माहिन हा के साथ, मिटाने वाला, मिटाने वाला, तो माही कहते हैं मिटाने वाले। तो माहियुज ज़ुनूब भी है, गुनाहों के निशानात को मिटा देता है, और दराजात को बुलंद, राफियु दराजात, दराजात को बुलंद करता है। तो शैतान कहता है कि जब लोगों ने, मैंने गुनाह कराया लोगों से, लोगों ने मुझे हलाक किया ला इलाहा इल्लल्लाह वल इस्तिगफार से, अब मैंने पैतरा बदला, शैतान कहता है फिर मैंने पैतला बदला, और इनको अहलकतुहु बिल अहवा, मैंने उनको हलाक किया हवाए नफ्स बिदआत के जरिए से। खूब जश्न मनाओ, इतनी झंडियां लगाओ, और इतना फातिहा करो, और इतना जो है कब्र पे चादर चढ़ाओ, इतना मिलेगा, इससे पता क्या कुछ मिलेगा, ऐसे कामों में लगाया, इन्नहुम यहसबून अन्नहुम मुहतदून, कि वो उस बुरे काम को समझेंगे हम हिदायत याफ्ता है, वो बुरे काम को अच्छा समझ के करेंगे, कभी तौबा की तौफीक नहीं होती। अब मुजावर भाई को कभी तौबा की तौफीक होती है? ये तो हमारी सारी जिंदगी यही गुजर गई, इन्हीं से मिलेगा जो मिलेगा, बेचारे को कवाली कर रहे हैं, उसको अच्छा समझ रहे हैं। गुना गाना सुनने वाला गुना समझता है, जो नौजवान गाना सुनते हैं आप उससे पूछिए, अक्सर जो कुछ भी दीन की मामूली मालूमात भी रखते हैं वो भी गाना सुनने को गुनाह समझते हैं, फिल्म देखने को गुनाह समझते हैं, लेकिन कव्वाली सुनने को ये लोग गुनाह नहीं समझते बल्कि जरिया कुर्ब समझते हैं। जरिया कुर्ब, अल्लाह की नाफरमानी को जरिया कुर्ब समझना अंदेशे कुफ्र है, अंदेशे कुफ्र है। मौलाना धानी साहब से पूछा गया कि आप रहते हैं नसीराबाद में, आपके करीब आयशा मंजिल में, उस जमाने में वीडियो कैसेट का दौर था, 30 साल पहले की बात है, आपके मसाइल का हल में छपा कि आपके कयाम गाह के करीब एक दुकान खुली है वीडियो कैसेट की, उसमें कुरान खानी से उसका आगाज हुआ है। हजरत ने लिखा अगर जान के ऐसा किया अंदेशे कुफ्र है, तो पता ही नहीं है बरकत होगी, तुम इंडियन फिल्में चला रहे हो और तुम्हें बरकत होगी कुरान पढ़वा रहे हो। शायर कहता होती है नाच गाने की कुरान से इब्तिदा, होती है नाच गाने की कुरान से इब्तिदा, जमजम मिला रहा है जमाना शराब में, जमजम मिला रहा है जमाना शराब। आप देखिए सुबह को नाद लगाएंगे, फिर थोड़ी देर में कव्वाली, फिर उसके बाद गाना। हजरत ने फरमाया मैं एक दोस्त के पास बैठा था, अब वो दोस्त आम सा होगा, हजरत वाला को नहीं पहचाना उसे, पहले उसने तिलावत लगाई, फिर उसने कुछ और, फिर गाने लगा दी, तो हजरत अरे क्या कर रहा, बंद करो इसको। अरे भाई मैं जरा जहन को फ्रेश कर रहा हूँ, गाना सुन के जहन फ्रेश कर रहा हूँ, बताइए। तो ये इसीलिए बहुत खतरनाक है ये मर्ज, ये जो बिदआत का मर्ज है ये खतरनाक है कि आदमी गलत को सही समझता है, और इसी हाल में अल्लाह ताला के पास गुनाह पे आदमी सर हर आदमी तौबा करता है, भाई नमाजें मेरी छुट्टी हैं, मैंने इतने गुनाह किए अल्लाह माफ कर दीजिए। और जो इस तरफ से आप देखें चूमने वाला गैर चूमने वाले को बिल्कुल समझता है गुस्ताख है, ये बददीन है, ये नबी से मोहब्बत नहीं करता, और खुद दाढ़ी भी कटा रहा है, और मिसवाक तक नहीं करने की तौफीक होती है। आप देखिए ऐसों को सुन्नत की तौफीक नहीं होती, जो लोग डाल्टा से मोहब्बत करते हैं ना उनको असली घी हजम नहीं होती, असली घी से उसको स्मेल आती है, स्मेल आजकल के बच्चों को आप खिलाएं कि स्मेल आती है इसमें अजीब सी, और डाल्टा खा रहे हैं तेल, वो तेल जो कितने मराहिल से बड़ी मुश्किल से रिफ्रेश होकर निकला है उसमें भी कोई जान नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, और वो जो देसी घी है उसमें कह रहे स्मेल है। वजह वही है कि ऐसे लोग सुन्नत से दूर हो जाते हैं, और बिदआत से जब करीब होते हैं सुन्नत से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा इस हमेशा फरमाया कुल्लु बिदअतिन वलाला, अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु बिदअतिन वलाला, हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु वलालतिन फिन्नार, और हर वलालत यानी गुमराही का हेड ऑफिस क्या है, दोज़ख। लिहाजा बिदआत जो है वहां लेके जाती है आखिर। और हकीम उल उम्मत फरमाते हैं कि रे हजरत गंगोई लिखते हैं मैंने किसी भी अहले बिदआत को मुकम्मल पाबंद शरीयत और सुन्नत नहीं देखा, कोई ना कोई कमी जरूर होगी कहीं मामलात में कभी कहीं। और बड़े पीर साहब को मैंने देखा ट्रेन से उतर रहे हैं और बड़े लोग लगे हुए हैं लाइन से मुसाफा करने, पैंचे बिल्कुल नीचे, सरकार ने बार बार साहबी को जाते हुए रोका इधर आओ जाबिर इब्न अब्दुल्ला अपने पैंचे ऊपर रखो पिंडलियों तक रखो, ये ना हो सके तो टखनों से नीचे कभी ना करना। साहबी कहते हैं इसके बाद कभी मेरा पैंचा टखना नहीं छुपा, साहबा अमल करने वाले थे। ये बेचारा ये तो बस ठीक है ऐसा इतना नहीं है, हमारे फला भी ऐसा करते थे, फला के करने से क्या होता है, सहाबा को देखा जाएगा, हम नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात देखी जाएंगी या किसी बुजुर्ग का अमल देखा जाएगा, वो भी ऐसा करते थे, तंबूरा उन्होंने ईजाद किया, बुजुर्ग को और कोई काम नहीं था तंबूरा ईजाद करना उनका काम, कितना बड़ा इल्जाम है किसी बुजुर्ग के ऊपर कि वो तंबूरा बजाता। हाँ किसी कैफ और जज्ब में झूमने लगे ये बात अलग है, कैफ और जज्ब अलग चीज है, उसमें गलबे हाल हो जाता है, गलबे हाल हो जाता है। मैंने जुमे को सुनाया, आखिरी बातें अर्ज कर रहा हूं, मैं खुद थक जाता हूं अपनी दास्ताने दर्द से अख्तर, मगर मैं क्या कहूं चुप भी नहीं मुझसे रहा जाता। तो एक अल्लाह वाले को शिबली लिखते हैं, हजरत शिबली जुनैद वाले वक्त की शिबली नौमानी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह देखिए क्या उसकी हालत थी, उस हालत को हम पा नहीं सकते ना, इसलिए उसकी नकल भी नहीं कर सकते, करामात वालों की हालात वालों की नकल हर आदमी नहीं कर सकता। हजरत राबिया बसरिया को देखा एक हाथ में पानी एक हाथ में आग लेके जा रहे हैं, किस लिए जा रही हैं, कहां जा रही हैं हजरत, कहेंगे मैं पानी से दोजख को बुझाने जा रही हूं और आग से जन्नत को जलाने जा रही हूं। ये इतनी कोई आम आदमी ऐसी जुरत कर सकता है? क्या हो गया? फरमाया कि लोग मेरे मौला की इबादत कोई जन्नत के शौक में करता है, कोई दोजख के खौफ से करता है। मैं चाहती हूं मेरे मौला की इबादत मेरे मौला की तलब और मोहब्बत में की जाए। ये जौक था, ये गलबे हाल है। कोई कर सकता है? जन्नत अल्लाह ने बनाई कोई जला सकता है उसको? दोजख अल्लाह ने बनाई कोई ठंडा कर सकता है उसको? ये गलबे हाल है। तो उन मजदूर पर भी यही था, वो जा रहे हैं, बच्चे पत्थर मार रहे हैं उनको, बच्चे पत्थर मार रहे हैं। हाँ हाँ, इन दल पोशाने मनन सद हजार अंदर हजारा यक तनन। हाँ हाँ, यही लोग हैं जो सैकड़ों हजारों में एक आध होते हैं और हमारे प्यारे होते हैं। कसम खा लें तो हम इनकी कसम पूरी कर देते हैं। कसम, अरे कसम तो दूर की बात है। हजरत मीर साहब बताते थे, कासिम भाई का चेहरा पहले वो उसमें बरस का निशान आ गया था। बरस की बीमारी सब जानते हैं कितनी खतरनाक होती है, चेहरा अजीब सा होने लगता है। मीर साहब रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने हजरत वाला से कहा, हजरत वाला वुजू फरमा रहे थे। मैंने कहा हजरत, ये मेरा भाई है कासिम, ये बाहर से आए थे, अलायन में रहते थे, वो तो ये आए हुए हैं, इनके बरस बढ़ता जा रहा है, आप दुआ फरमा दी। हजरत ने यूं देखा और फरमाया, अच्छा अगर ये सारा चेहरा ही ऐसा हो जाए सफेद। मैं इतना फरमाया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, यानी कि सलाते आजाद पढ़ के दुआ किया, थोड़े दिनों में वैसा ही हो गया चेहरा। जिन्होंने देखा उनको याद होगा कि चेहरा बिल्कुल व्हाइट था, यानी कोई बुरा भी नहीं लगता था। तो पता चला बाद दफा कसम भी नहीं खानी पड़ती और सलाते हाजात पढ़ के दुआ कह देते हैं, अल्लाह ताला पूरा कर देते हैं। तो वो अल्लाह वाले के बारे में लिखते हैं हजरत शिबली रहमतुल्लाह ताला, हजरत शेख ने इसको फजाइल आमाल में नकल किया है कि हजरत शिबली कह फरमाते हैं कि मैंने देखा वो दीवाना लोग लड़के उसको पत्थर मार रहे हैं, मैंने लड़कों को धमकाया, क्या करते हो, चलो उड़ो इधर। कहने का आप मैं क्यों मार रहे हैं पता है? ये कहता है कि मैं अल्लाह को देखता हूं। अब वो लड़के कह रहे हैं, लड़कों क्या हुआ लड़के? तो हजरत शिबली उसके पास गए और जाके कहा, क्या कह रहे हैं, सही इल्जाम लगा रहे हैं? उसने एक शेर पढ़ा अरबी में, ख्यालुका फी आईनी व जिक्रुका फी फमी व मस्वाका फी कल्बी फाइन तगीबू। तेरा तसव्वुर तो मेरी आंख में है, तेरा जिक्र मेरी जबान पर है, तेरा ठिकाना मेरा दिल है, तू मुझसे कहां गायब हो सकता है? और वल्लाह अगर वो एक लम्हे के लिए गायब हो जाए तो मेरा इंतकाल हो जाए। ये कहता हुआ वो भाग गया वहां से। किस कैफियत में था वो अल्लाह वाला? ये अल्लाह वाले हैं जो ले गए कमा के। तेरा जिक्र तेरा हुस्न है नजर में, मैंने इसका तर्जमा किया दी, तेरा हुस्न है नजर में, तेरा विर्द दर जबा है, तेरा हुस्न है नजर में, तेरा जिक्र दर जबा है, मेरा दिल तेरा मका है, मेरे यार तू कहां है। बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज तर्जमा है, क्योंकि मैंने पहले कंप्यूटर पे ये लिखा फिर उसके बाद शेर लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। तेरा हुस्न है नजर में, तेरा जिक्र दर जबां है, मेरा दिल तेरा मकां है, मेरे यार तू कभी ना तगीब, तू कहां चला जाता है, तू तेरे बगैर तो मैं रह नहीं सकता। एक अल्लाह वाला सुनाते थे, एक अल्लाह वाले जा रहे थे सफर पे, तो दूसरे अल्लाह वाले के पास जा रहे थे, चलो मिलने बहुत अल्लाह हो गया मुलाकात, ये मुलाकात करना भी बहुत अल्लाह ताला को पसंद है, अपने पीर भाइयों से मिलना, अलग थलग रहना हजरत वाला फरमाते थे पसंदीदा नहीं है, कभी कभी मिलना चाहिए। मैं खास कर जाता हूँ गुरफा, जब जाता हूँ तो गुरफा जाता हूँ हजरत वाला की खबर पे, और फिर गुरफा, फिर मुमताज साहब से, वहां के तमाम अपने दोस्तों से कोशिश करता हूँ जिससे भी मुलाकात हो जाए, क्योंकि इससे शेख की याद भी आती है और दोस्तों से, नेक दोस्तों से मिलना, नेक दोस्तों से मिलना चाहिए, वरना आहिस्ता आहिस्ता आदमी अकेला रह रहे के अपने आप को ही बहुत कुछ समझने लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह, और बुजुर्गों की कब्र पे जाने से फैज मिलता है, वहां जाके तो चंद दिन मेरा आदमी खड़ा रहे, सर खड़ा रहे, वहां दुआ नहीं मांगते हम, दुआ किबले की तरफ मांगते हैं, साथ ही मस्जिद है वहां जाके दुआ मांगते हैं, वहां कुछ इसाले सवाब करते हैं, लेकिन उसका फैज कई दिनों तक महसूस होता रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि हजरत फरमा रहे हैं असर आया हुआ है, जब मैं आता था असर आया हुआ है, चलो भाई ताजा अशार सुनाएगा असर, भाई मजमे में फरमाते कहां है असर, तो असर जो है वहां दूर से चला आ रहा है मजमा चीरता हुआ। डांट पड़ी मुझे, यहां क्यों नहीं बैठता, जब पता है कि बुलाया जाएगा पहले से यहां बैठा कर। अब हमें सर्टिफिकेट मिल गया बैक डोर से जाने का, पिछले दरवाजे से हम चले जाते, हमें इजाजत मिल गई, क्योंकि मजमा चीरने को मना फरमाया, वो जो पढ़ने वाले होते इसलिए वो पिछले दरवाजे से आ जाते। तो अल्लाह वाले जिंदगी में तो काम आते ही हैं, मरने के बाद भी कभी कभी उनकी कब्र पर जाना चाहिए। ये ना हो कि आदमी भूल जाए और अपने बड़ों को इसाले सवाब करना। हजरत मुफ्ती अब्दुल रऊफ सकरवी साहब दामदर का तुम ने फरमाया कि जो अपने बड़ों को इसाले सवाब करता है उसके जाने के बाद अल्लाह ताला ऐसे लोग पैदा करते हैं जो उसके लिए इसाले सवाब करें। अपने वालदेन को इसाले सवाब नहीं करते, बहुत शेख को करना चाहिए, वालदेन को जिनसे पढ़ा है, असातिज़ा को, और बहुत सी चीजें आदमी रोज करता है, तिलावत कर रहा है, जिक्र कर रहा है, या अल्लाह इसका सवाब मेरे वालदेन को, दो नफिल बड़ी इशराक की, या अल्लाह इसका सवाब मेरे दादा को पहुंचा दीजिए, दादी को, अब थोड़ा पढ़ खुद रहा है, सवाब हमें मिलेगा और उनको भी मिलेगा। तो बुजुर्ग जा रहे हैं और बहुत दूर सफर होता था उस जमाने में, तो कहीं दरख्त के नीचे लेट गए इस्तराहत करने, चलो भी थोड़ा आराम कर लें फिर आगे जाएंगे, तो कुछ परिंदे आपस में बात कर रहे थे। ये बता रहा हूं गफलत में अल्लाह वाले नहीं रहते आमतौर, दो परिंदे आपस में बात कर रहे थे कि अरे ये कहां जा रहे हैं। दूसरे ने कहा भाई ये फलाने बुजुर्ग से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। तो उसने कहा कि उनका तो इंतकाल हो गया, तो उनको कश्फ हो गया जो उन्होंने बात की, समझ गए। तो फिर सोचा वो बताओ मैं इतनी दूर आ गया, चलो अब इतनी दूर आ गया हूं तो कम अज कम ताजियत कर लें उनकी औलाद वगैरह। जब वहां गए तो देखा सही सलामत बैठे हुए, तो कहा हजरत कैसा हाल हो गया जमाना कि परिंदे भी झूठ बोलने लगे, क्या हुआ? कहा ये हुआ। कहा कब हुआ, कितने बजे? कहा 10 बजे 11 बजे जो भी टाइम था बताया। कहा हाँ सही कहा, उस वक्त में मैं गाफिल हो गया था। अल्लाह ताला गाफिल और मुर्दा बराबर होता है, यानी इतनी देर भी गाफिल नहीं होते, वरना वो समझा के क्योंकि उनके तो जिक्र मशहूर है, इसीलिए मछलियां भी जिक्र करती हैं। एक अल्लाह वाले का लिखा है शेख ने कहीं पर कि वो मछलियां जिक्र करती हैं, इसलिए हजरत वाला जाके दरिया के किनारे जिक्र करते कि वो मछलियां भी जिक्र करती हैं, साथ जिक्र हो रहा है और अल्लाह का कि मखलूक का नजारा, पहाड़ों का दामन, समंदर का साहिल, मेरी आहे दिल के यही है मनाजिल। तो एक मछली पकड़ के लाया उसका अब्बा, एक मछली पकड़ के लाया तो वो बच्ची थी, वो सोबत याफ्ता थी, अब्बा से सुनती रहती थी, लिहाजा उसने कहा कि अब्बा ये कहा भी है, लो बेटी पकाओ। कहा कैसे पकाएं अब्बा, आपने तो खुद ही कहा है कि मछली जब तक जिक्र करती रहती है उसको जाल में नहीं फंसती, जब गाफिल होती है तो जाल में फंस जाती है। अब हम गाफिल मछली कैसे खाएं, हम भी गफलत में पड़ जाएंगे। गाफिल मछली खाने से उसने मना कर दी। बस औरतें इस तरह होती। हजरत मुसैद इब्ने मुसैब रहमतुल्लाह ताला ताबई हैं, बहुत बड़े ताबई हैं, ज़ुहाद और बाद में से, बता रहा हूं आजकल लोग फिक्र नहीं करते। हाँ अभी मैट्रिक कर लो फिर इंटर कर लेना, फिर 4 साल में डॉक्टर बन जाना, फिर 26 साल 27 साल फिर 35 साल रिश्ते आना बंद हो जाते हैं, फरिश्ते आने का वक्त आ जाता है। ये खुद अपनी बेटियों को बूढ़ा कर रहे हैं बेटा के। आला तालीम होनी चाहिए, आला तालीम। सईद इब्ने मुसैब की मैंने खुद पढ़ा ये किस्सा कि अहलिया ने कहा बेटी जवान हो गई है, रात बालिग हो गई। अब सईद इब्ने मुसैब मस्जिद में गए, रिश्ता कहां तलाश कर रहे हैं, इश्तिहार नहीं दे रहे, रिश्ता मस्जिद में तलाश कर रहे हैं, देख कौन अच्छी नमाज पढ़ता है। एक नौजवान को पकड़ा, देखा कि वो नमाज पहले आया था, देर तक पढ़ रहा है, दुआएं मांग रहा है। उससे बाद मिले, खैर खैरियत कहां रहे, तो यहीं रहता हूं, शादी करोगे? ये भी नहीं पूछा करते क्या हो, शादी करोगे? कहा शादी तो करना चाहता हूं लेकिन कौन मुझे लड़की देगा, मैं तो कोई खास काम कमाता भी नहीं हूं, बहुत ही फकर में गुजारा होता है जैसे तैसे, अभी भी रोजा है। कहा मैं तुम्हें अपनी बेटी दूंगा। वो इबादत देख के, उसकी नेकी देख के, माल और जमाल नहीं बल्कि आमाल देख कर, लिहाजा मैं तुम्हें अब बेटी दे दो। दो दिन में रुख्सत कर दिया उसके, 1-2 दिन में, ये भी नहीं 2 साल बाद शादी होगी, 2-4 साल बाद। कोई मजबूरियां हैं तो अलग बात है, लेकिन बिला वजह इसकी ताखीर करना नहीं। लड़की आलिमा बन रही है, पूछे हमारे दोस्त के साथ हुआ, लड़की आलिमा बन रही है, 1 साल लगेगा तो हमारे दोस्त ने रिश्ता तोड़ दिया, दूसरी जगह कर ली। कि बताइए ये कोई कुर्बानी है? कोई कुर्बानी नहीं है। जब लड़की को रिश्ता जोड़ का मिल जाए तो जिस तरह नमाज जनाजा में ताखीर जायज नहीं है, इसी तरह इस रिश्ते में भी बिला वजह ताखीर ना करे। हाँ कोई जैसे बहुत से तौलबा इकराम आलिम बनना चाह रहे हैं, लड़के के लिए आलिम बन रहा है और वो अगर इसकी वजह से करता है क्योंकि पढ़ाई कमजोर हो जाएगी। मुफ्ती नजमुल हसन साहब ने मुझसे फरमाया और भी असातिज़ा फरमाते हैं कि पहले जो है दर्स पूरा कर लेना चाहिए निजामी, वरना कमजोर रह जाता है क्योंकि आखिरी साल में बहुत मेहनत कराई जाती है। बहरहाल वो रुख्सत होके घर गई, जब वो अपने घर गई यानी शौहर के घर, तो और खुद ले जाके पहुंचा दिया, कोई बारात नहीं, ताबईन की बारात चली आ रही है, कुछ भी ले जाके पहुंचा दिया बेटी को। अब बेटी गई तो देखा कि मटके के ऊपर एक रोटी का टुकड़ा रखा है, मटके के ऊपर रोटी का टुकड़ा, मटके में पानी वही यही तो एक बिछौना मटका पानी उसके ऊपर रोटी का टुकड़ा। उसने कहा मैं मुझे पता था मेरी तो किस्मत फूट गई। हाँ क्या हुआ? अब उसने कहा मुझे भी पता था कि तुम यहाँ आके तुम परेशान होगी, मेरे पास कुछ नहीं है। कहा पूछो तो सही मैं किस पे परेशान हो रही हूँ। कहा ये तुमने रोटी का टुकड़ा क्यों रखा है? अभी रोटी का टुकड़ा मेरा रोजा है, शाम को इफ्तारी करूंगा। तुम्हें इतना तवक्कुल नहीं है, अकीदा नहीं है कि अल्लाह ताला शाम को खिलाएगा, तुमने पहले से इंतजाम करके रखा। इसको कहते हैं नहले पे दहला, दो चार हाथ आगे। वो तो था मुतवक्किल, बीवी ऐसी थी, वो बच्ची सईद इब्ने मुसय्यब की बेटी थी। तुम्हें इतना यकीन नहीं है कि शाम को रोजा अल्लाह ताला इफ्तार करवाएगा? तो ये इस किस्म के लोग थे। आखिर ये लोग भी तो जमीन के ऊपर थे। अब भी हम नहीं कहते, अब भी ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो माशाल्लाह कुर्बानियां दे रहे हैं, मुजाहदा कर रहे हैं, लिहाजा ठीक है। अभी हम कोई किसी मौलवी ने कहा तो बताइए कि भाई अब क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम पक्के घर में नहीं रहे, हमें भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे किसी आपने पेट भर के खाना नहीं खाया, हमें भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कहता। ठीक है जी, जायज हुदूद में अपने अपनी अपनी मईशत करो, लेकिन उसके अलावा भी तो कम अज कम अच्छा खाओ अच्छा पहनो। हमारे अच्छा खाओ अच्छा पहनो, अच्छी गाड़ी अच्छा मोबाइल सब कुछ, अमल भी अच्छा हो। बस अमल भी तो वैसे ही अच्छा हो कि तकवा का एहतमाम हो। कभी तकवा टूट जाए तो फौरन रो रो के जोड़ लो, परेशान ना हो, ना मायूस हो ना दिलेर हो, दोनों के दरमियान में रहो। मायूस भी ना हो और दिलेर भी ना हो, कि दिलेर हो कि हाँ कोई बात नहीं सारी दुनिया कर रही है, ये भी गलत है। मायूस होना भी गलत है, हम कहाँ और कहाँ अल्लाह की दोस्ती हमारे बस की नहीं है, लिहाजा गुनाह करते रहो, हम तो हैं ही जहन्नमी। बाद लोग बड़े आराम से कह देते हैं, किसी ने उस दिन कोई दोस्त बता रहा था लतीफा सुनाया कि भाई खूब गुनाह कर लो, जहन्नम में इतने लोग आ गए नाउज बिल्ला कि अब यहाँ जगह नहीं है, मैं भी दीवार पे बैठा हुआ हूँ, जगह नहीं है। ऐसा लतीफा सुनाना भी सही नहीं है, बता रहा हूँ। ये क्या मजाक कर रहे हो तुम? अल्लाह क्या अल्लाह हर इंसान के लिए जन्नत भी बनाई है दोजख भी बनाया, ऐसा लतीफा सुनाना भी जायज नहीं है। इसको मजाक बना लिया जन्नत और दोजख को। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए हम सबको, अल्लाह वाली हयात अता फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहमदिही, सुभान अल्लाह अल अज़ीम।